ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। भारतीय काव्य संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ आनंदवर्धन द्वारा रचित ध्वन्यालोक है, किंतु स्वयं आनंदवर्धन ने एक स्थान पर लिखा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुद्धैर समामनात् पूर्वः, जिससे पता चलता है कि ध्वनि की परंपरा उनके पहले भी रही है। फिर भी आनंदवर्धन से पूर्व का कोई ग्रंथ न मिलने के कारण ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं उसकी परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है तथा ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। अतः ध्वनि सिद्धांत को सम्यक रूप से समझने के लिए पहले शब्द शक्तियों का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होगा। शब्द शक्तियाँ। भारतीय शास्त्रों में भाषा की अर्थ सूचित करने की क्षमता को शक्ति या वृत्ति के नाम से पुकारा गया है। इन शक्तियों की गणना विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है, जिनसे इनकी कुल संख्या 6-7 तक पहुंच जाती है, जैसे अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, रसना, भावना, भोग आदि। इनमें से प्रथम तीन शब्द शक्तियां हैं, चतुर्थ का संबंध शब्द से न होकर वाक्य से है, तथा शेष तीन काव्य की ही विशिष्ट शक्तियां हैं जो अर्थ के भावन या रसास्वादन में योग देती हैं। ध्वनि का संबंध मुख्यतः शब्द शक्तियों से ही है, अतः यहाँ केवल शब्द शक्तियों, अविधा, लक्षणा एवं व्यंजना का ही विवेचन क्रमशः किया जाएगा। क अविधा। शब्द की जिस शक्ति के कारण उसका साक्षात संकेतित अर्थ सूचित होता है, या यूँ कहिए कि उसका सामान्य सर्वप्रचलित या उससे सीधा संबंध रखने वाला अर्थ प्रकट होता है, उसे अविधा शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए मकान, कुर्सी, मनुष्य, गधा आदि के उच्चारण मात्र से जो अर्थबोध होता है वही अविधात्मक अर्थ है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि इस अविधात्मक अर्थ को बनाने वाला कौन है। इसके उत्तर में विद्वानों ने विभिन्न बातें कही हैं। प्रसिद्ध भारतीय नैयायिक गदाधर भट्टाचार्य के मत से परंपरागत सामान्य शब्दों का अर्थ ईश्वर ने निश्चित किया है, जबकि शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्द शास्त्रकारों द्वारा गढ़े हुए हैं। भट्टाचार्य का यह मत अब बहुत पुराना हो गया है। यदि हमारे शब्द या शब्दार्थ स्वयं ईश्वर के द्वारा गढ़े हुए होते तो सही वस्तुओं मनुष्यों के द्वारा एक जैसे ही शब्द प्रयुक्त होते, इतनी भाषाएं उत्पन्न नहीं होती। वस्तुतः आज के युग में, जबकि स्वयं ईश्वर के ही अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, भट्टाचार्य के मत को मान्यता देना बहुत कठिन है। पाश्चात्य विकासवादियों के मत से मानव जाति की उन्नति एवं समाज के आर्थिक विकास के साथ साथ शब्दों और भाषा का विकास क्रमशः होता गया। निःसंदेह सामाजिक विकास के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिन्होंने अविधात्मक अर्थ के सूचक शब्दों के विकास में योग दिया होगा, किंतु फिर भी मूल कारणों के संबंध में हम उपर्युक्त विकासवादी मत को ही स्वीकार करना उचित समझते हैं। ख लक्षणा। अविधा के अनंतर दूसरी महत्वपूर्ण शब्द शक्ति लक्षणा है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है, उद्धरण चिन्ह, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। इसे भलीभांति समझने के लिए लक्षणा के मुख्यतः तीन लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं। एक, मुख्यार्थ की बाधा। मुख्यार्थ से तात्पर्य है वाच्यार्थ या विधेयार्थ। जहाँ लक्षणा शक्ति होती है वहाँ वाच्यार्थ या विधेयार्थ लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी मनुष्य के लिए कहा जाए कि वह गधा है तो गधे शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ लागू नहीं होगा। दो, लक्षणा का दूसरा लक्षण यह है कि अभिन्न अर्थ जो कि लागू होता है बिल्कुल ऊपर से थोपा हुआ भी नहीं होना चाहिए, उसका वाच्यार्थ से कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। जैसे गधे को सामान्यतः मूर्ख समझा जाता है, अतः इसी संबंध से गधे का अर्थ भी मूर्ख कर लिया जाता है। तीसरे, लक्षणा में भिन्न अर्थ का प्रयोग दो कारणों से होता है, एक तो परंपरा निर्वाह के कारण या फिर किसी विशेष प्रयोजन से। उदाहरण के लिए जंगल जाना, नित्य कर्म, हरिजन आदि शब्द परंपरा निर्वाह को सूचित करते हैं, तो गरीब की कुटिया, चरण सेवक आदि विशेष प्रयोजन को प्रकट करते हैं। अस्तु, उपर्युक्त तीन लक्षणों के आधार पर भी अविधा और लक्षणा का भेद स्पष्ट किया जा सकता है। ग व्यंजना। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार के शब्दों में अपना अपना अर्थबोधन करके अविधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थबोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थादिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, जिस प्रकार कोई वस्तु पहले से ही विद्यमान किंतु गूढ़ वस्तु को प्रकट कर देती है, उसी प्रकार यह शक्ति मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के झीने पर्दे में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर देती है। यह वह शक्ति है जो बाह्य सौंदर्य के रेशमी पर्दे को हटाकर काव्य के वास्तविक लावण्य को व्यक्त करती है। इसीलिए इसे व्यंजना माना गया है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार का अंजन है, अर्थात अविधा या लक्षणा द्वारा अप्रकाशित अर्थ को प्रकाशित कर देता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बैठा कोई अफसर अपने क्लर्क से कहे, मैं जा रहा हूँ, तो इसका मुख्यार्थ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसका यह व्यंग्यार्थ कि अब ऑफिस का काम तुम संभालो। वस्तुतः इसी व्यंजना शक्ति को ध्वनि संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इसके संबंध में वे लिखते हैं, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वसत्वस्ति वाणिसु महाकविनाम यत्त तत्त प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमीवांगनासु। काव्यस्य आत्मा सैवार्थस्तता चादिकवेः पुरा क्रौंच द्वंद्वो वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागतः। अर्थात प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों मुख नेत्रादि से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों के सुक्तियों से भासित होती है। काव्य की आत्मा का वही अर्थ है। इसी से प्राचीन काल में क्रौंच पक्षी के जोड़े के वियोग से उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि का शोक श्लोक रूप में परिणत हो गया। अस्तु, इसमें स्पष्ट है कि ध्वनि संप्रदाय में व्यंग्यार्थ का कितना अधिक महत्व है। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की परिभाषा करते हुए ध्वन्यालोककार ने लिखा है, उद्धरण चिन्ह, जहाँ अर्थ स्वयं की तथा शब्द अपने अविधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है, उद्धरण चिन्ह बंद। इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ यानी प्रतीयमान अर्थ तो होता ही है, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, उस प्रतीयमान अर्थ का वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होना अपेक्षित है। या यूं कहिए कि जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख एवं वाच्यार्थ गौण हो, वहीं ध्वनि मानी जा सकती है। प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को प्रमुखता किस कारण से प्राप्त हो सकती है? इसके उत्तर में कहा गया है कि सौंदर्य के आधार पर ही व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से प्रधान हो सकता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक सुंदर हो, वहाँ ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक सुंदर हो, वहाँ ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा। किंतु साथ ही आनंदवर्धन ने दूसरी स्थिति की भी पूर्ण अपेक्षा नहीं की। ऐसा काव्य जहाँ की व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम सुंदर हो तथा वह वाच्यार्थ का अंग बन जाता हो, उसे उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य की संज्ञा दी है, और जहाँ व्यंग्यार्थ अस्फुट रहता है, उसे चित्र काव्य कहा है। इस प्रकार काव्य की तीन श्रेणियाँ हुई, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट कोटि के काव्य को सूचित करते हैं। ध्वनि का अस्तित्व। क्या गुण, अलंकार आदि से पृथक ध्वनि नाम का भी कोई अलग तत्व होता है? यह शंका भी अनेक बार अनेक विद्वानों द्वारा उठाई गई है। इतना ही नहीं, ध्वनि के विरोधियों ने तो ध्वनि के मूलाधार व्यंग्यार्थ तक के अस्तित्व को भी अस्वीकार किया है। ध्वनि विरोधियों के मुख्यतः ये चार वितर्क हैं। एक, व्यंजना की अविधा से पृथक सत्ता नहीं है। दो, व्यंजना की लक्षणा से पृथक सत्ता नहीं है। तीन, प्रतीयमान अर्थ या तथाकथित व्यंग्यार्थ अनुमान से ग्रहण होता है, अतः व्यंजना और ध्वनि को मानने की आवश्यकता नहीं। चार, ध्वनि का समन्वय समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारों में किया जा सकता है। इनमें से अनेक आक्षेपों का खंडन स्वयं ध्वन्यालोककार अपने ग्रंथ के आरंभ में कर चुके हैं। हम यहाँ पर पुनः संक्षेप में विचार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम अविधावादियों को ले सकते हैं। इनके ही पांच वर्ग हैं। एक, अभितान्वयवादी। दो, अन्विताभिधानवादी। तीन, निमित्तवादी। चार, दीर्घतराभिधा व्यापारवादी। पांच, तात्पर्यवादी। अभिहितान्वयवादियों के मत से वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे पहले अपने अपने अविधेय अर्थ को सूचित करते हैं, तदनंतर वे परस्पर मिलकर पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे तात्पर्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ को वे तात्पर्यार्थ का ही अगला रूप मानते हैं, उससे पृथक नहीं मानते। निसंदेह इस वर्ग के विद्वानों का यह तर्क बहुत कमजोर है। वे व्यंग्यार्थ को तात्पर्यार्थ का अगला रूप मानकर न केवल दोनों का पार्थक स्वीकार कर लेते हैं अपितु यह भी मान लेते हैं कि व्यंग्यार्थ तात्पर्यार्थ से अधिक विकसित होता है। अन्विताभिधानवादियों के अनुसार ही भी व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से पृथक नहीं है, वह शब्दों के अन्वित अर्थ से ही प्रकट होता है। ईश्वर के विद्वान अभिधा पर इतना बल देते हैं कि वे तात्पर्य शक्ति को ही स्वीकार नहीं करते। तीसरा वर्ग निमित्तवादियों का है, जिसके विचार से प्रतीयमान अर्थ के निमित्त शब्द ही हैं। शब्द और प्रतीयमान अर्थ में कारण कार्य संबंध है, अस्तु वे व्यंग्यार्थ का निमित्त शब्द एवं अविधा शक्ति को मानते हुए व्यंजना की कल्पना को आवश्यक मानते हैं। इस मत का खंडन भी आगे चलकर मम्मट ने सफलतापूर्वक कर दिया है। चौथा वर्ग दीर्घतराभिधा व्यापारवादियों का है, इस मत के अनुसार किसी भी शब्द और वाक्य से जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं उन सभी में अविधा शक्ति का ही कार्य होता है। अविधा शक्ति किसी एक ही अर्थ को प्रकट करके क्षीण नहीं हो जाती अपितु वह अन्य अर्थों की ही प्रतीति करती है। अविधा के इस दीर्घतर व्यापार को तीर या बाण के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जब एक तीर किसी के शरीर में लगता है तो उस व्यक्ति के कवच को विद्ध करता है, हृदय में घुसता है और उसके प्राण ले लेता है। अब बताइए कि ये तीनों कार्य अकेले तीर की शक्ति से ही हुए या किन्हीं अन्य शक्तियों से। यदि इसका उत्तर अकेले तीर की शक्ति से ही है तो फिर यह भली भांति कहा जा सकता है कि वाक्य से प्रकट होने वाले वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ आदि सभी अकेली अविधा की ही देन है। इस मत के प्रवर्तक भट्ट लोल्लट का एक अन्य तर्क यह है कि शब्द का अर्थ वही है जिसकी प्रतीति के लिए उसका प्रयोग किया गया है। यदि कोई शब्द या वाक्य भिन्न अर्थ सूचित करता है तो अवश्य वहां वक्ता ने भी उसे भिन्नार्थ में प्रयोग किया होगा तथा ऐसी स्थिति में उस भिन्नार्थ को ही वाच्यार्थ मानना चाहिए। अस्तु इस दृष्टिकोण से व्यंग्यार्थ का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि भट्ट लोल्लट के उपरोक्त तो दोनों तर्क ही उनकी गहरी सूझबूझ एवं प्रबल तर्क शक्ति को सूचित करते हैं, किंतु इनका खंडन भी किया जा सकता है। पहले तर्क में उन्होंने एक ही तीर के द्वारा होने वाले कार्यों की तुलना भिन्न अर्थों से की है, किंतु सादृश्य की दृष्टि से यह तुलना ठीक नहीं बैठती। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में उतना ही अंतर नहीं है जितना कि हृदय में तीर लगने और प्राणांत हो जाने में है। हमारे विचार से तीर का उदाहरण दिया ही जाए तो इस प्रकार होना चाहिए, शत्रु का तीर सेनापति को लगता है, उससे सेनापति घायल हो जाता है, सेनापति के घायल हो जाने के कारण सारी सेना भाग जाती है, पराजित हो जाती है। अस्तु तीर लगने में और सेना के पराजित होने में जितना अंतर है लगभग उतना ही अंतर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में है। स्पष्ट है जिस प्रकार तीर लगने का परिणाम होते हुए भी सेना की पराजय को उससे अभिन्न नहीं किया जा सकता कहा जा सकता, उसी प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ को भी एक नहीं कहा जा सकता। दूसरे तर्क के संबंध में निवेदन है कि प्रत्येक वक्ता शब्दों का प्रयोग सदा वाच्यार्थ में ही नहीं करता, वह जानबूझकर कई बार उन्हें व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त करता है। जो सिद्धि से व्यंग्यार्थ से उपलब्ध होती है वह उसे वाच्यार्थ से नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का अंतर स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है। कविवर बिहारी ने जो बात नहीं पराग नहीं मधुर मधु के माध्यम से व्यंग्य पूर्वक कही थी वही यदि वाच्यार्थ में कह दी गई होती तो उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती। अस्तु यह एक भ्रांत धारणा है कि जानबूझकर व्यंग का प्रयोग किए जाने पर वह वाच्यार्थ या वाच्यार्थ की कोटि का हो जाता है। अविधावादियों में पांचवा वर्ग तात्पर्य शक्ति को मानता है। धनंजय के अनुज धनिक ने व्यंजना के स्थल पर तात्पर्य शक्ति का समर्थन करते हुए लिखा था, उद्धरण चिन्ह, व्यंग्यार्थ वस्तुतः तात्पर्य ही है, प्रतीयमान अर्थ तात्पर्य से भिन्न नहीं है, अतः उसे व्यंजना द्वारा प्रतिपाद्य नहीं माना जा सकता, न उसका व्यंजक काव्य ही ध्वनि है। तात्पर्य तो वस्तुतः जहां तक कार्य होता है वहां तक फैला रहता है। तात्पर्य को तराजू पर तोलकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह इतना ही है, यही तक है, इससे अधिक नहीं। निसंदेह विद्वान व्याख्याता की मौलिकता प्रशंसनीय है, किंतु यदि वे अर्थ का सारा कार्यभार अकेले तात्पर्य के कंधे पर न डालकर उसका कुछ भाग व्यंग्य को ही सौंप देते तो सचमुच तात्पर्य और व्यंग्य दोनों के साथ ही अधिक न्याय होता। अभी तक हम अविधावादियों से ही जूझते रहे हैं, किंतु इनसे भी एक अधिक सबल दल लक्षणावादियों का हमारे सामने और विद्यमान है। इतना ही नहीं, उधर अनुमानवादी महिम भट्ट तो इस प्रकार प्रचंड हो रहे हैं मानो वे ध्वनि को बिल्कुल धराशायी करके ही छोड़ेंगे। खैर, सबसे पहले हम लक्षणावादियों से ही बात करते हैं। उनकी प्रमुख दलील है, जिस प्रकार मुख्यार्थ की संगति न बैठने पर उपचार से लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है, ठीक उसी प्रकार वाच्यार्थ की संगति बैठने पर ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। अतः क्यों न प्रतीयमान अर्थ को लक्ष्यार्थ का ही एक भेद मान लिया जाए। इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि व्यंग्यार्थ सदा लक्षणा के माध्यम से ही प्राप्त नहीं होता, उसकी उपलब्धि सीधे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से भी हो सकती है। जहां लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के निष्क्रिय हो जाने पर ही काम करता है, वहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की सक्रियता की दशा में भी अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। यूं कहना चाहिए कि लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ की हिंसा करके ही आगे बढ़ता है, जबकि व्यंग्यार्थ पूरा अहिंसक होता है। ऐसी स्थिति में भला दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ध्वनि के सबसे बड़े विरोधी आचार्य महिम भट्ट ने तो इसके विरोध में पूरा एक ग्रंथ व्यक्ति विवेक ही लिख डाला। इसमें उन्होंने ध्वनि की परिभाषा, उसके भेदों उपभेदों आदि का खंडन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ध्वनि वस्तुतः अनुमान से पृथक नहीं है। अतः उन्होंने ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति नाम प्रस्तावित किया। उनके विचार से अर्थ के भी केवल दो ही प्रकार हैं, वाच्य तथा अनुमेय। वाच्य अर्थ से अनुमित, अन्य अर्थ हेतु से जिसकी अनुमिति हो वही अनुमेय है। इसी को ध्वनिवादियों ने व्यंग या प्रतीयमान अर्थ कहा है। इस प्रकार महिम जिस तत्व का खंडन करना चाहते हैं उसी को उन्होंने दूसरा नाम देकर स्वीकार कर लिया है। अतः ध्वनि को चाहे ध्वनि कहा जाए या काव्यानुमिति, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हाँ, ध्वनि के विरोध में एक प्रबल युक्ति और है, वह यह कि क्या ध्वनि को समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकार में समन्वित नहीं किया जा सकता? इस युक्ति पर आनंद वर्धनाचार्य विचार कर चुके हैं और इन अलंकारों से ध्वनि की तुलना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक तो इसमें ध्वनि की भांति व्यंग्यार्थ को प्रमुखता प्राप्त नहीं होती, दूसरे ध्वनि का क्षेत्र अलंकारों से अधिक व्यापक है। अतः ध्वनि में भले ही अलंकारों का समन्वय किया जा सके, किंतु अलंकारों में ध्वनि को अंतर्भूत नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से यहाँ आनंदवर्धन के मत में थोड़ी दुर्बलता है। यह ठीक है कि जिन अलंकारों से उन्होंने ध्वनि की तुलना की है वे ध्वनि से थोड़े भिन्न हैं, किंतु यदि उन्हें कोई साम्य रखने वाला अलंकार भी मिल भी जाता तो क्या वे उसे ध्वनि का पर्याय स्वीकार कर लेते? और सही बात तो यह है कि एक ऐसा अलंकार विद्यमान भी है, वह अन्योक्ति है। अन्योक्ति में भी व्यंग्योक्ति की ही भांति दो अर्थ होते हैं तथा व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए बिहारी के इस दोहे को लीजिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यौ, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त दोहा यदि अलंकारवादियों की दृष्टि से अन्योक्ति है तो ध्वनिवादियों की दृष्टि से व्यंग्योक्ति का ध्वनि है या ध्वनि है। अतः कहना चाहिए कि ध्वनि भी एक विशेष प्रकार का अलंकार ही है, किंतु उसे ध्वनिवादियों ने अत्यंत व्यापक रूप प्रदान कर दिया है। यहाँ हमारा लक्ष्य केवल ध्वनि सिद्धांत का परिचय देना ही है, उसका खंडन करना नहीं। अतः इस संबंध में हम अधिक विचार अन्यत्र करेंगे। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में निश्चित रूप से अंतर है। इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे आचार्यों ने अनेक स्पष्ट आधार निश्चित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। क बोद्धा के अनुसार आज वाच्यार्थ की प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है, जबकि व्यंग्यार्थ कुछ व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ख स्वरूप, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के स्वरूप में ही प्रायः अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि आप तो बहुत दुबले हैं तो इसका व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ग संख्या, वाच्यार्थ प्रायः एक ही होता है जबकि व्यंग्यार्थ अनेक हो सकते हैं। घ निमित्त, वाच्यार्थ केवल शब्द ज्ञान से ही समझ में आ सकता है जबकि व्यंग्यार्थ को समझने के लिए प्रतिभा एवं बुद्धि भी अपेक्षित है। अंग काल, वाच्यार्थ की प्रतीति तुरंत हो जाती है जबकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति उसके अनंतर होती है। च कार्य, वाच्यार्थ से केवल विषय का ज्ञान होता है जबकि व्यंग्यार्थ आनंद या चमत्कार भी उत्पन्न करता है। छ आश्रय, वाच्यार्थ केवल शब्दों पर आश्रित रहता है जबकि व्यंग्यार्थ शब्द, अर्थ, वक्ता के लहजे, प्रसंग आदि पर निर्भर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में निश्चित रूप से अंतर है, अतः दोनों का पार्थक्य ही मानना उचित है। काव्यत्व का अधिवास कहाँ? ध्वनि के संबंध में यह भी एक विवाद प्रचलित है कि काव्यत्व का अधिवास उसके किस पक्ष में है, वाच्यार्थ में या व्यंग्यार्थ में। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इंदौर वाले भाषण में कहा था, उद्धरण चिन्ह, वाच्यार्थ के अयोग्य और अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ प्राप्त करने के लिए लक्षणा और व्यंजना का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रहती है, वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ में या व्यंग्यार्थ में? इसका बेधड़क उत्तर यही है, वाच्यार्थ में, चाहे वह योग्य हो या उपपन्न हो अथवा अयोग्य और अनुपपन्न। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे उन्होंने साकेत से उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया, उद्धरण चिन्ह, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उद्धरण चिन्ह बंद। इसका वाच्यार्थ बहुत अत्युक्त व्याहत तथा बुद्धि को सर्वथा अग्राह्य है। उर्मिला आप ही मिट जाएगी, तब तो अपने प्रियतम लक्ष्मण को वन से लाएगी क्या? पर सारा रस, सारी रमणीयता इसी व्याहत और बुद्धि को अग्राह्य वाच्यार्थ में ही है। इस योग्य और बुद्धिग्राह्य व्यंग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को अत्यंत औत्सुक्य है। इससे स्पष्ट है कि वाच्यार्थ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं। पंडित रामदहिन मिश्र ने आचार्य शुक्ल के इस मत का खंडन करते हुए शास्त्रीय आधार पर काव्यत्व का अधिवास व्यंग्यार्थ में ही सिद्ध किया है। इसी मत का समर्थन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है, उद्धरण चिन्ह, किसी रसात्मक वाक्य को पढ़कर हमें जो आनंदानुभूति होती है उसके लिए उस वाक्य का कौन सा तत्व उत्तरदायी है? उस वाक्य या वाच्यार्थ जिसमें शब्दार्थगत चमत्कार रहता है, अथवा व्यंग्यार्थ जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाव की रमणीयता रहती है? इस उक्ति की वास्तविक रमणीयता का संबंध रतिजन्य व्यग्रता में ही है जो व्यंग्य है, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे चलकर उन्होंने और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है, शुक्ल जी का यह तर्क बड़ा विचित्र लगता है कि सारी रमणीयता इसी व्याहत और बुद्धि को अग्राह्य वाच्यार्थ में है। इस योग्य और बुद्धिग्राह्य व्यंग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को अत्यंत औत्सुक्य है। इसमें दो त्रुटियां हैं, एक तो उर्मिला को अत्यंत औत्सुक्य है यह व्यंग्यार्थ नहीं रहा, वाच्यार्थ हो गया। औत्सुक्य की व्यंजना है चित्त की चमत्कृति का कारण है, उसका कथन नहीं। दूसरे, जिन अनुपन्नता पर वे इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयता का कारण नहीं, उसका एक साधन मात्र है। उसका यहाँ वही योग है जो रस की प्रतीति में अलंकार का है। उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है मानो विरोध करते करते अनायास ही किसी दुर्बल क्षण में शुक्ल जी पर क्रोचे का जादू चल गया, उद्धरण चिन्ह बंद। इस प्रकार यह विवाद एक साधारण बात से गंभीर विषय बन गया है। इसके संबंध में हम दोनों ही आचार्यों के प्रति पूरी तरह श्रद्धा रखते हुए अपनी धारणा इस प्रकार निवेदित कर देना चाहते हैं। क, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में से काव्यत्व का अधिवास कहाँ है? यह प्रश्न वैसा ही है जैसा कि यह पूछना कि प्राण धड़ में रहता है या सिर में। वस्तुतः जब तक सिर और धड़ संयुक्त रहते हैं तब तक ही दोनों में प्राण रहते हैं। दोनों को पृथक कर देने पर दोनों ही प्राणहीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ में समन्वित है या व्यंग्यार्थ से आवृत्त है तब तक ही उक्ति में काव्य तत्व की सत्ता रहती है। ख, ध्वनि की परिभाषा एवं उसके किए गए पांच अर्थों के अनुसार व्यंग्यार्थ से संबंधित शब्द, अर्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजना शक्ति, व्यंजित वस्तु, अलंकार, रस आदि ये सब ध्वनि संज्ञा से ही अभिभाषित होने योग्य है। अतः व्यंग्यार्थ जैसी निधि का स्वामी वाच्यार्थ भी सामान्य दरिद्र वाच्यार्थ ही नहीं रहता, अपितु वह ध्वनि नामधारी वैभवशालियों की ही पंक्ति में आविराजता है। ग, यदि किसी ध्वनि काव्य के दो अनुवाद तैयार करवाए जाएं, तो एक में केवल उसका वाच्यार्थ हो तथा दूसरे में उसका केवल व्यंग्यार्थ हो, तो इस स्थिति में अवश्य ही काव्य रसिक पहले अनुवाद को ही पसंद करेंगे। जैसे बिहारी के नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाले दोहों में दोनों प्रकार के अनुवाद देखिए, एक अनुवाद केवल वाच्यार्थ, इस कली में न तो ही पराग है न ही मधुर मधु और न ही यह पूरी तरह खिल ही पाई है। हे भ्रमर, तू अभी से इसके वशीभूत हो गया, न जाने आगे क्या हाल होगा। दो अनुवाद केवल व्यंग्यार्थ, राजा जयसिंह से बिहारी कह रहे हैं कि तुम्हारी यह नवेली वधु अभी तो अल्प वयस्क ही है, इसमें सौंदर्य एवं अनुराग का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है, फिर भी तुम इसके वशीभूत हो रहे हो तो फिर न जाने आगे क्या हाल होगा। निसंदेह यहाँ दूसरे अर्थ की अपेक्षा पहला ही अधिक आकर्षक है और इसका कारण डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में दूसरे अर्थ का वाच्यार्थ में परिणत हो जाना है। यही तो बेचारे व्यंग्यार्थ की सबसे बड़ी दुर्बलता है, यह वाच्यार्थ के बिना जीवित नहीं रह पाता, जबकि वाच्यार्थ उसी के बल पर ऐश्वर्य एवं सम्मान का भागी होता है। अस्तु, आचार्य शुक्ल ने दुर्बल क्षणों में नहीं अभी तो सोच समझकर व्यंग्यार्थ की इस दुर्बलता का लाभ उठाया है। बाकी व्यंग्यार्थ समन्वित वाच्यार्थ का भी नाम ध्वनि है, अतः दोनों के सह अस्तित्व में ही सौंदर्य की सत्ता मानी जा सकती है, किसी एक में नहीं। ध्वनि के भेद, ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद किए जाते हैं, एक अविधामूला और दो लक्षणामूला। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है अविधामूला में सीधे अविधेय अर्थ से ही व्यंग्यार्थ ध्वनित हो जाता है, जबकि लक्षणामूला में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इसके भी अनेक उपभेद हैं। अविधामूला के दो उपभेद हैं, एक असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और दो संलक्ष्य क्रम ध्वनि। जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ ही व्यंग्यार्थ ध्वनित हो जाता है, दोनों के बीच में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता, वहाँ असंलक्ष्य क्रम ध्वनि कहते हैं। जैसे अरे घी तो यहाँ रुपये का दो छटांक मिलता है, इसका व्यंग्यार्थ है कि यहाँ महंगाई बहुत है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के बोध होने का क्रम प्रतीत हो जाता है। जैसे माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली के स्थान पर काल या मृत्यु संबंधी जिस अर्थ का बोध होता है वही व्यंग्यार्थ है। यह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अनुभूति के किंचित बाद प्रतीत होता है। उपर्युक्त दो भेदों के भी अनेक भेद और किए गए हैं। असंलक्ष क्रम ध्वनि के छह प्रकार हैं, पदगत, पदांशगत, वाक्यगत, वर्णगत, रचनागत और प्रबंधगत, तथा संलक्ष क्रम के तीन भेद हैं, शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव और शब्दार्थोभय शक्ति उद्भव किए गए हैं, जिनका सोदाहरण विवेचन पंडित रामदहन मिश्र ने अपने काव्य दर्पण में किया है। हम यहाँ इन्हें अधिक महत्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। अब लक्षणामूला ध्वनि के भेदों को लीजिए। सर्वप्रथम इसके दो भेद हैं, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य एवं दो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य किए गए हैं। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लक्षणा के मूल वाच्यार्थ की उपेक्षा होती है, किंतु उस उपेक्षा की भी दो कोटियाँ हैं, जहाँ एक थोड़ी उपेक्षा हो जाती है, दूसरी जहाँ बिल्कुल हो जाती है। लक्षणामूला ध्वनि के दोनों भेद क्रमशः इन्हीं दो कोटियों पर आश्रित हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य में वाच्यार्थ थोड़ा सा अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है, जैसे राखी सजी पर कलाई नहीं है। यहाँ कलाई का व्यंग्यार्थ है भाई की कलाई, या वह भाई जिसका संबंध राखी से है। स्पष्ट है कि यहाँ कलाई का अर्थ संक्रमित हो गया है। इसके विपरीत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ का बिल्कुल तिरस्कार हो जाता है, जैसे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ में चूहे शब्द का अर्थ सर्वथा तिरस्कृत हो जाता है। अविधा मूला की भांति लक्षणा मूला के भी अनेक उपभेद और होते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंचती है। हम अपने लेख में इन सबको स्थान देना अनावश्यक समझते हैं। हाँ, एक अन्य प्रकार से ध्वनित काव्य का और वर्गीकरण किया गया है जो उल्लेखनीय है। इस वर्गीकरण के अनुसार ध्वनि के तीन भेद होते हैं, एक रस ध्वनि, दो अलंकार ध्वनि, तीन वस्तु ध्वनि। इन तीनों में क्रमशः रस, अलंकार और वस्तु तथ्य या विषय की व्यंजना होती है, तथा इनमें ध्वनि रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार ध्वनि संप्रदाय ने रस को अपने यहाँ सर्वोच्च स्थान देकर उसके साथ समझौता कर लिया है। ध्वनि संप्रदाय का महत्व। जैसा कि हमने अभी कहा है, ध्वनि संप्रदाय ने रस को सर्वोच्च स्थान देकर उसके साथ समझौता कर लिया, किंतु फिर भी यह विचारणीय है कि रस और ध्वनि में किसका अधिक महत्व है। क्या ध्वनि इतनी व्यापक है कि रस उसमें समा जाए? हमारे विचार से ऐसा नहीं है। रस यदि साध्य है तो ध्वनि उसकी साधिका मात्र है। रस का संबंध काव्य के आधारभूत तत्वों से है, जबकि ध्वनि केवल एक अभिव्यक्ति प्रणाली है। यह ठीक है कि वह अभिव्यक्ति प्रणाली रसानुभूति के लिए सहायक सिद्ध होती है, किंतु फिर भी उसे आधारभूत तत्वों के समान महत्व नहीं दिया जा सकता। फिर यदि प्रतीयमान अर्थ वाली धारणा को उसके मूल अर्थ में लिया जाए, तो कवि को अपनी सारी बात ऐसी भाषा में कहनी पड़ेगी जहाँ दोहरे अर्थ हों। यह ध्यान रहे कि ध्वनि संप्रदाय वालों ने रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि के भेद बनाकर अपने इसी दोहरे अर्थ वाली धारणा में थोड़ा संशोधन कर लिया, किंतु फिर भी ध्वनि का मूल लक्ष्य तो प्रतीयमान अर्थ ही है। इसके अतिरिक्त ध्वनि संप्रदाय अपने आप में एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है। अंततः वह रस और अलंकार संप्रदाय को आधार बनाकर ही आगे बढ़ सका। ध्वनि संप्रदाय में अन्य संप्रदायों की भांति कई त्रुटियां और असंगतियां भी हैं। एक ओर तो ध्वनिकार प्रतीयमान अर्थ को ही काव्य की आत्मा मानते हैं, तो दूसरी ओर ध्वनि के पांच अर्थों में प्रतीयमान अर्थ के अतिरिक्त ध्वनि के अन्य अवयव भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता, अप्रधानता और शून्यता के आधार पर ही काव्य को उत्तम, मध्यम एवं अधम घोषित कर देना भी ध्वनिवादियों का अतिवाद है। सही बात तो यह है कि प्रतीयमान अर्थ भी चारुत्व या सौंदर्य के हेतुओं में से एक है। यदि किसी अन्य हेतु से काव्य में चारुत्व आ जाता है तो काव्य मानने में क्या आपत्ति है? हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वस्तुतः काव्य की आत्मा वह चारुत्व या सौंदर्य ही है जिसका उल्लेख बार बार ध्वन्यालोककार द्वारा हुआ है, तथा ध्वनि, अलंकार, रीति आदि ये सब उसी चारुत्व की उपलब्धि के साधन मात्र हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि ध्वनि का स्थान इन साधनों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।